नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। योआकिम रोजबर्ग की पुस्तक एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद एज्योर डेवऑप्स कॉन्सेप्ट्स टेम्पलेट्स एंड मैट्रिक्स एक व्यावहारिक तकनीकी मार्गदर्शिका है जो एजाइल कार्य प्रणालियों को माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेवऑप्स के माध्यम से लागू करने पर केंद्रित है। 2019 में प्रकाशित यह पुस्तक लगभग 315 पृष्ठों में एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट डेवऑप्स और एजाइल प्रोजेक्ट संचालन के संबंध को समझाती है। इसका उद्देश्य केवल किसी टूल के बटन और स्क्रीन दिखाना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि बैकलॉग, वर्क आइटम, बोर्ड, मैट्रिक्स और रिपोर्टिंग मिलकर टीम के काम को कैसे दृश्य, प्रबंधनीय और सुधार योग्य बनाते हैं। पुस्तक स्क्रम, कानबान और सेफ जैसी प्रथाओं के लिए एज्योर डेवऑप्स के उपयोग पर चर्चा करती है। इसमें आरंभ से एजाइल प्रोजेक्ट स्थापित करने, कार्य प्रवाह को टीम की जरूरत के अनुसार ढालने और पूरे जीवन चक्र में प्रगति मापने का क्रम शामिल है। इसलिए इसका मुख्य पाठक वर्ग प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, एजाइल लीडर और एज्योर डेवऑप्स के साथ काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले एजाइल एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और डेवऑप्स का साझा ढांचा। पुस्तक की बुनियादी विशेषता यह है कि यह एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अकेली मीटिंगों, स्प्रिंटों या बोर्डों तक सीमित नहीं करती। रोजबर्ग इसे एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और डेवऑप्स के व्यापक ढांचे में रखते हैं। इस दृष्टि में विचार, आवश्यकताएं, विकास, परीक्षण, डिलीवरी और सीख अलग विभागों की असंबद्ध गतिविधियां नहीं है। एज्योर डेवऑप्स इन चरणों में काम की जानकारी जोड़ने वाला माध्यम बनता है। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि टीम को यह पता होना चाहिए कि किसी अनुरोध का व्यावसायिक उद्देश्य क्या है, वह किस कार्य में विभाजित हुआ है, उसका परीक्षण किस स्थिति में है और उसकी प्रगति को किस संकेतक से देखा जाएगा। एजाइल का लाभ तभी मिलता है जब पारदर्शिता और फीडबैक नियमित निर्णयों को प्रभावित करे। पुस्तक इसीलिए टूल अपनाने से पहले प्रक्रिया की समझ पर बल देती है। केवल डिजिटल बोर्ड बना देने से टीम एजाइल नहीं हो जाती। बोर्ड की अवस्थाएं, कार्य की परिभाषा, प्राथमिकता के नियम और पूर्ण होने के मानदंड टीम के वास्तविक काम से मेल खाने चाहिए। यह ढांचा विशेष रूप से उन संगठनों के लिए उपयोगी है जो पारंपरिक परियोजना प्रबंधन से अधिक निरंतर, सहयोगी और मापनीय डिलीवरी मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा, वर्क आइटम और बैकलॉग को उत्पाद निर्णयों का संरचित आधार बनाना। एज्योर डेवऑप्स में वर्क आइटम और बैकलॉग केवल कार्यों की सूची नहीं है, वे उत्पाद संबंधी निर्णयों को दर्ज करने और क्रम देने की प्रणाली है। पुस्तक समझाती है कि एजाइल प्रोजेक्ट शुरू करते समय काम को ऐसे रूप में व्यवस्थित करना जरूरी है जिससे टीम प्राथमिकताओं को साझा रूप से समझ सके। बैकलॉग रिफाइनमेंट का उद्देश्य अधिक आइटम जमा करना नहीं, बल्कि अपेक्षाओं को स्पष्ट करना, बड़े काम को संभालने योग्य हिस्सों में बांटना और निकट भविष्य के कार्यों को पर्याप्त रूप से तैयार रखना है। वर्क आइटम का उपयोग आवश्यकताओं, फीचर, यूजर स्टोरी, बग या टास्क जैसे कामों को स्थिति और संबंधों सहित देखने में किया जा सकता है। इससे प्रोडक्ट ओनर और विकास टीम के बीच बातचीत किसी अस्पष्ट मांग के बजाय दर्ज, प्राथमिकीकृत और ट्रैक होने वाले काम पर होती है। पुस्तक यह भी महत्वपूर्ण संकेत देती है कि टेम्पलेट और वर्क आइटम संरचना टीम की प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए। बहुत अधिक अनिवार्य फील्ड या अनावश्यक स्तर अपडेट को बोझिल बना सकते हैं, जबकि बहुत कम संरचना रिपोर्टिंग और जवाबदेही को कमजोर कर सकती है। इसलिए लक्ष्य ऐसा संतुलन बनाना है जिसमें डेटा उपयोगी हो पर टीम का समय प्रशासनिक अद्यतन में न फंसे। तीसरा, स्क्रम, कानबान और सेफ को एज्योर डेवऑप्स में लागू करने के अलग तरीके। पुस्तक स्क्रम, कानबान और स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क यानी सेफ को एक ही प्रक्रिया मानने की गलती से बचाती है। इनका उद्देश्य सहयोग और मूल्य वितरण बेहतर करना है, लेकिन काम के प्रवाह और योजना के स्तर अलग हो सकते हैं। एक स्क्रम में समयबद्ध स्प्रिंट, स्प्रिंट बैकलॉग और कार्य बोर्ड टीम को सीमित अवधि के लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। एज्योर डेवऑप्स का स्क्रम बोर्ड रोजाना की प्रगति, अवरोध और शेष कार्य को दृश्य बनाने में सहायक है। कानबान में निरंतर प्रवाह और कार्य की अवस्थाओं पर अधिक जोर होता है। कानबान बोर्ड से टीम यह देख सकती है कि काम किस चरण में जमा हो रहा है, जिससे प्रक्रिया की बाधाएं पहचानी जा सकें। सेफ बड़े पैमाने पर कई टीमों के समन्वय की जरूरत से जुड़ता है। वहां फीचर, टीम स्तर का काम और व्यापक योजना के बीच संबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एज्योर डेवऑप्स में पदानुक्रम और बैकलॉग स्तर इस संबंध को दिखाने में मदद कर सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश यह है कि संगठन को प्रचलित नाम के आधार पर फ्रेमवर्क नहीं चुनना चाहिए। उसे अपने काम की प्रकृति, टीमों की संख्या, निर्भरताओं और डिलीवरी की लय के अनुसार बोर्ड, बैकलॉग और योजना की संरचना तय करनी चाहिए। चौथा, मैट्रिक्स से प्रगति देखना, बिना टीम को केवल संख्या तक घटाए, प्रगति की विश्वसनीय समझ एजाइल प्रबंधन का केंद्रीय विषय है और पुस्तक इज योर डेवॉप्स में उपलब्ध मैट्रिक्स तथा रिपोर्टिंग की उपयोगिता पर ध्यान देती है। लेकिन मैट्रिक्स का सही उपयोग नियंत्रण के लिए नहीं, सीखने और निर्णय सुधारने के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए, बैकलॉग की स्थिति, बोर्ड पर कार्य का वितरण और समय के साथ पूरे हुए काम के रुझान टीम को क्षमता, अवरोध और योजना की विश्वसनीयता पर बातचीत करने का आधार देते हैं। किसी एक माप को अंतिम सत्य मानना भ्रामक हो सकता है। अधिक पूर्ण आइटम हमेशा अधिक ग्राहक मूल्य का प्रमाण नहीं होते और तेज गति कभी कभी गुणवत्ता परीक्षण या तकनीकी कर्ज की उपेक्षा भी छिपा सकती है। इसीलिए मैट्रिक्स को कार्य के संदर्भ के साथ पढ़ना आवश्यक है। पुस्तक के दायरे में एज्योर डेवॉप्स की अंतर्निहित रिपोर्टिंग शुरुआत के लिए उपयोगी आधार प्रदान करती है। प्रोडक्ट ओनर और एजाइल लीडर इन संकेतकों के आधार पर प्राथमिकता, कार्यभार और प्रक्रिया संबंधी चर्चा अधिक तथ्यपूर्ण बना सकते हैं। अच्छी रिपोर्टिंग का उद्देश्य व्यक्ति विशेष की निगरानी नहीं बल्कि प्रणाली में सुधार योग्य हिस्से पहचानना है। जब टीम डेटा को साझा निरीक्षण के साधन की तरह अपनाती है, तब मैट्रिक्स अनुमान के स्थान पर प्रमाण आधारित सुधार को समर्थन देते हैं। अंत में, कस्टमाइजेशन और काल्पनिक प्रोजेक्ट के जरिए जीवन चक्र आधारित कार्यान्वयन। पुस्तक का एक उपयोगी पक्ष एज्योर डेवॉप्स की विस्तारशीलता और प्रक्रिया अनुकूलन पर उसका ध्यान है। अलग उत्पाद टीमों की शब्दावली, अनुमोदन आवश्यकताएं, रिपोर्टिंग जरूरतें और कार्य प्रवाह समान नहीं होते, इसलिए तैयार टेम्पलेट को बिना बदलाव अपनाना हर स्थिति में उचित नहीं है। रोसबर्ग वर्क आइटम और रिपोर्टिंग को अपनी कार्यप्रणाली के अनुरूप ढालने की संभावना दिखाते हैं। फिर भी अनुकूलन का मूल्य तभी है जब वह किसी स्पष्ट समस्या को हल करे, जैसे आवश्यक जानकारी का अभाव, अस्पष्ट स्थिति या उपयोगी रिपोर्ट न मिलना। हर स्थानीय आदत को टूल में स्थायी नियम बना देने से प्रक्रिया जटिल और रखरखाव कठिन हो सकता है। पुस्तक का चरणबद्ध प्रोजेक्ट सेटअप और काल्पनिक प्रोजेक्ट कार्यान्वयन इसी संतुलन को व्यवहारिक रूप देता है। पाठक को परियोजना की शुरुआत से लेकर उसके संचालन तक बैकलॉग, बोर्ड, मैट्रिक्स और अनुकूलित रिपोर्टिंग को जोड़कर देखने का अवसर मिलता है। यह संरचना खास तौर पर नए एज्योर डेवॉप्स उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि वे अलग सुविधाओं को अलग अलग सीखने के बजाय उन्हें पूरे जीवन चक्र में प्रयुक्त प्रणाली के रूप में समझ सकते हैं। अनुभवी टीमों के लिए भी यह याद दिलाती है कि टूल कॉन्फ़िगरेशन को समय समय पर वास्तविक प्रक्रिया और निर्णय जरूरतों के विरुद्ध जांचना चाहिए। निष्कर्ष में, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद एज्योर डेवॉप्स उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो एजाइल की मूल भाषा समझते हैं, लेकिन उसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेवॉप्स में व्यवस्थित रूप से चलाने का व्यावहारिक ढांचा चाहते हैं। प्रोडक्ट ओनर बैकलॉग और प्राथमिकता प्रबंधन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। स्क्रम मास्टर और एजाइल लीडर बोर्ड कार्यप्रवाह और मैट्रिक्स को टीम सुधार की बातचीत से जोड़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यह देख सकते हैं कि उनके दैनिक टास्क बड़े उत्पाद लक्ष्यों, परीक्षण और डिलीवरी संदर्भ से कैसे जुड़े हैं। उपलब्ध समीक्षात्मक आकलन के अनुसार, यह विशेष रूप से नए प्रोजेक्ट मैनेजरों, गैर एजाइल पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों और एज्योर डेवॉप्स आरंभ करने वाली टीमों के लिए एक आधारभूत परिचय है। इस क्रम का अनुभव रखने वाले पाठकों को एज्योर डेवॉप्स केंद्रित अध्याय अधिक उपयोगी लग सकते हैं। इसकी सीमा भी इसी स्थिति से जुड़ी है, क्योंकि अत्यंत अनुभवी एजाइल विशेषज्ञों के लिए एजाइल सिद्धांतों का भाग अपेक्षाकृत बुनियादी हो सकता है। फिर भी समान श्रेणी की उन पुस्तकों से इसका अंतर स्पष्ट है, जो या तो केवल एजाइल दर्शन समझाती हैं या केवल टूल की सुविधाओं की सूची देती हैं। रोसबर्ग एजाइल अवधारणाओं एज्योर डेवॉप्स कॉन्फ़िगरेशन, सेफ, स्क्रम और कानबान, मैट्रिक्स तथा रिपोर्टिंग को एक ही संचालन संदर्भ में रखते हैं। यही संयोजन इसे किसी टीम के आरंभिक सेटअप, प्रक्रिया समीक्षा और टूल आधारित पारदर्शिता सुधार के लिए उपयोगी संदर्भ बनाता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जोआकिम रोसबर्ग, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।